लूका की इंजील बाब 9। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा और उन्हें खुदा की बादशाही की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा,
राह के लिए कुछ न लेना, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये, न दो दो कुर्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वही रहना और वहीं से रवाना होना, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल न करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो।
बस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदेस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज ये कहते थे,
यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है,
और बाज ये के
एलिया जाहिर हुआ है,
और बाज ये
कदीम नबियों में से कोई जी उठा है।
मगर हेरोदेस ने कहा,
यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ।
फिर उसे देखने की कोशिश में रहा, फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया, और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा,
भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांवों और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं।
उसने उनसे कहा,
तुम ही उन्हें खाने को दो।
उन्होंने कहा,
हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों से ज्यादा मौजूद नहीं, मगर हाँ हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए।
क्योंकि वो 5,000 मर्द के करीब थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा,
उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ।
उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सैर हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा,
लोग मुझे क्या कहते हैं?
उन्होंने जवाब में कहा,
कुछ लोग तुझको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और बाज एलिया कहते हैं,
और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है।
उसने उनसे कहा,
लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो?
पत्रस ने जवाब में कहा,
खुदा का मसीह।
उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना, और कहा,
जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे।
और उसने सबसे कहा,
अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहां खड़े हैं बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को न देख लें मौत का मजा हरगिज न चखेंगे।
फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बुर्राक हो गई, और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलम में वाक़ होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में भरे थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा,
ऐ साहिब, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम तीन डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए।
लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए, और बादल में से एक आवाज आई,
ये मेरा पसंदीदा बेटा है, इसकी सुनो।
ये आवाज आते ही यीशु अकेला पाया गया और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थी उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर न दी। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो एक आदमी ने भीड़ में से चिल्ला कर कहा,
अरे उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे बेटे पर नजर कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है, और देखो उसे एक रूह पकड़ लेती है और वो एकाएक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कब भर लाता है और उसको कुचल कर मुश्किल से छोड़ती है, और मैं तेरे शागिर्दों की मिन्नत की कि उसे निकाल दे, लेकिन वो ना निकाल सके।
यीशु ने जवाब में कहा,
ऐ बेएतिकाद और कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, अपने बेटे को यहाँ ले आ।
वो आता ही था कि बदरूह ने उसे पटक कर मरोड़ा, और यीशु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया, और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। लेकिन जिस वक्त सब लोग उन सब कामों पर जो वो करता था ताजुब कर रहे थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा,
तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहीं, क्योंकि इब्ने आदम आदमियों के हाथों में हवाले किए जाने को है।
लेकिन वो इस बात को समझते न थे, बल्कि ये उनसे छिपाई गई ताकि उसे मालूम ना करें, और इस बात की बाबत उससे पूछते हुए डरते थे। फिर उनमें यह बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन यीशु ने उनके दिलों का ख्याल मालूम करके एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा,
जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, क्योंकि तुम में जो सबसे छोटा है वही बड़ा है।
यूहन्ना ने जवाब में कहा,
ऐ साहिब, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहे निकालते देखा और उसको मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता।
लेकिन यीशु ने उससे कहा,
उसे मना न करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है।
जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे खासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा,
अय खुदावन, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया?
मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा,
तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया।
फिर वो किसी और गांव में चले गए। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा,
जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा।
यीशु ने उससे कहा,
लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं।
फिर उसने दूसरे से कहा,
मेरे पीछे चल।
उसने कहा,
आए खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं।
उसने उससे कहा,
मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला।
एक और ने भी कहा,
आए खुदावन, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ।
यीशु ने उससे कहा,
जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं।